नमस्ते दोस्तों, आप सभी का पुनर्वास के तीसरे एपिसोड में स्वागत है। हम अब तक जलपरी से मिले, उसकी जीने के तरीके से रूबरू हुए, पर अभी भी सुमन का सवाल अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा है। जलपरी अपने सवाल से मुक्त तो हो गई, पर अभी भी उसके चेहरे में चिंता है, जिसे देखकर समुंदर उसे पूछता है, क्या हुआ, चिंता में क्यों हो? जलपरी बोलती है, मुझे इंसानों की चिंता हो रही है। सब जानते हैं, समझते हैं, फिर भी क्यों पृथ्वी को नुकसान दे रहे हैं? कोई इन्हें समझाता क्यों नहीं? समुंदर ने जलपरी से पूछा, क्या तुम्हें पता है इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई और इसको समझाना इतना कठिन क्यों है? जलपरी बोली, नहीं, मुझे नहीं पता। समुंदर बोला, फिर तुम्हें समझना होगा ये जीव ऐसे क्यों है। निर्जीव अणुओं से पृथ्वी पर सजीव बने और सूर्य की ऊर्जा से सारे जीवों का विकास होता है, और इन्हीं जीवों में से अधिक बुद्धिमान और विशाल जीव इंसान है, जिसका ज्यादा विश्वास विज्ञान पर है, पर अध्यात्म इसका जवाब दे चुका है। सौर्यमंडल की बनावट ज्यामिति की एक सटीकता तक पहुंच चुकी है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूम रही है, ज्यामिति अगर सटीकता खो दे तो पृथ्वी का नाश कभी भी हो सकता है। मनुष्य अपने चरण सीमा पर है, अब इससे ज्यादा उसमें बदलाव नहीं हो सकते, अब इंसान को बेहतर होना पड़ेगा। अध्यात्म कहता है मनुष्य के नौ अवतार अब तक आ चुके हैं, विज्ञान अभी भी इसकी खोज कर रहा है, और अध्यात्म की बातें सत्य है यह विज्ञान भी कह रहा है, पर फिर भी मनुष्य का विश्वास जो है विज्ञान पर ज्यादा है। अध्यात्म कहता है कि निर्जीव से जब जीव बने तब पहली उत्पत्ति जल से हुई। समुंदर जलपरी की तरफ देखकर बोलता है, जहां पर तुम और मैं आज भी है, मत्स्य अवतार पानी से विकसित हुआ था। उसके बाद कुरुम अवतार, यानी कि वो जीव जो पानी और आधे पानी के बाहर विकसित होते हैं। तीसरा अवतार वरह अवतार, जो जंगल में रहता था और जिसमें बड़े बड़े जानवर होते थे, डायनासोर भी एक उसमें से ही एक था। 650 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया, और जिस वजह से पृथ्वी के 25 किलो के वजन से अधिक सारे जीव जलकर खत्म हो गए। सिर्फ 10% पृथ्वी जो है वो जीवित थी, जिसमें 5% जीव जो थे वो स्तनधारी थे, क्योंकि वो जमीन के अंदर रहते थे, इस वजह से वो इस नस्ता नबूद हुई हुई पृथ्वी से बच पाए, और वहां से शुरुआत हुई पुनः नियोजन की। फिर आया नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा जानवर, जहां से आवाज की उत्पत्ति हुई। वामन अवतार में मनुष्य को बोनी स्थिति मिली। परशुराम अवतार में भावना प्रदान हुई। शांति और कर्तव्य की पालना राम से मिली, और कृष्ण से प्रेम और अपने अधिकारों को लड़ने की शक्ति। नवे अवतार में मनुष्य को खुद के अंदर की शक्तियों का ज्ञान हुआ, जो बुद्ध ने दिया। ये सब अध्यात्म कहता है, विज्ञान इसमें कई खोज कर रहा है। विज्ञान भी यही बता रहा है कि अध्यात्म से मनुष्य के मस्तिष्क का काफी विकास हो रहा है। मॉडर्न न्यूरोसाइंटिस्ट कह रहे हैं कि इंसान का दिमाग अब बढ़ नहीं सकता, उन्हें ज्यादा बेहतर करना होगा। लॉ ऑफ फिजिक्स इसका कोई इजाजत नहीं दे रहा है। सूर्य की ऊर्जा और चंद्रमा के घूमने का इंसान पर प्रभाव पड़ता है। समुद्र का स्तर भी चंद्रमा के साथ साथ कम ज़्यादा होता है। औरत का शरीर चंद्रमा के साथ तालमेल में था तो मनुष्य जीव इस धरती पर बहुत भारी यात्रा में बढ़े। चंद्रमा की 28 दिनों की परिक्रमा महिला के शरीर को न दोहराती तो शायद मनुष्य नहीं होते। मूलभूत भौतिक नियम इसे ज्यादा विकसित अनुमति नहीं देते। न्यूरोसाइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि मनुष्य के एक हिस्से में रेंगने वाले जीव का भास है। मनुष्य का केंद्र भाग रेप्टिलियन ब्रेन है। अध्यात्म कहता है ध्यान साधना और योग से इसका विकास संभव है। न्यूरोसाइंटिस्ट भी अब इसे मानने लगे हैं। 241% इसका विकास हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा भाग है। 21 मिनट के योग और ध्यान धारणा से इंसान के ब्रेन का विकास हो सकता है। उम्र के साथ साथ ब्रेन भी बढ़ सकता है, ताकि आप पा सकते हैं कि जिस तरीके से इंसान की आयु बढ़ती है उस तरीके से वो बुद्धिमान होता जाएगा। जिस तरह बाहरी दुनिया की सुख सुविधाएं मनुष्य विकसित कर रहा है, उतना ध्यान अगर आंतरिक विकास करे तो बहुत कुछ बदलाव संभव है। रेप्टिलियन ब्रेन के पैटर्न में पाया गया है कि मनुष्य खुद का बचाव करना हो तो दूसरों को हानि कर सकता है। इंसान यह करता पाया गया है, क्योंकि विज्ञान के कार्यों का सबूत है और अध्यात्म अनुभव पे विकसित है। इसलिए अध्यात्म को मानने वालों की संख्या कम है। विज्ञान मशीनों और आधुनिक विकसित तंत्रों पर आगे बढ़ रहा है, जिससे पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य खुद को भी हानि पहुंचा रहा है। इतना सुनकर जलपरी समुद्र की बातों को काटते हुए कहती है, इतना कुछ जानने और समझने के बाद खामोश रहना जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है। हम जाते हैं और मनुष्य को सब बताते हैं और हानि से रोकते हैं। समुद्र कहता है, जितना आसान तुम समझ रही हो उतना आसान नहीं है। मनुष्य की जीवन शैली उन्हें काफी महत्वाकांक्षी और सामाजिक नियमों से और कई कारणों वश अपने खुद के ताबूतों को तोड़ना इनके लिए आसान नहीं है। मनुष्य को आत्मनिर्भर और आंतरिक पुनः नियोजन का विकास करना होगा, और यह पुनर्वास इतना आसान नहीं। जलपरी बहुत हताश होकर बोलती है, अब आत्मनिर्भर पुनः नियोजन और पुनर्वास कैसे होगा? इंसान खुद ही समझना नहीं चाह रहा। अगले भाग में हम आत्मनिर्भर पुनः नियोजन और पुनर्वास को आगे बढ़ाएंगे, पर आज के हमारे श्रोताओं का जवाब सुने जिन्होंने बताया है कि वह धरती पर क्यों आए हैं। अनुराग नायक, कनाडा से।
हाय, इट इज अ प्रीटी गुड क्वेश्चन व्हाई वी आर ऑन अर्थ। लॉजिकली थिंकिंग, absolutely no idea why I'm here, why people are here, or why we are on earth. For the people who do not believe in God, probably the answer is earn money, live a happy life, better life, a prosperous life, and do whatever you have dreamt of. But spiritually speaking, it is all because of the karmic retribution. So If you have done anything, everything that you have done on earth, you have to have its consequence. So, spiritual point of view, till the time you attain the nirvana, which is getting out of the cycle of getting birth and death, you have to have be on earth and do your duty, do your karma. That's all. Thank you.
Uddhav, Hyderabad se.
I'm on this earth to learn, to gain more and more knowledge. Knowledge is one thing that creates harmony within oneself. So I'm like an atom whose subatomic particles are not arranged properly yet. And harmony means a proper organization of these subatomic particles within me. They constitute me. They together is what I am. So by knowledge of everything that there is, I get organized myself, which is in perfect, I'm perfect harmony. I would be in perfect harmony with myself, and therefore I would not be a source of conflict or disharmony for myself or for my family or society or with nature. So I am here, the purpose of my life on earth, with this material earth, I am conscious atom and I am associated with this material earth to learn about everything that there is and thereby get self-organized and harmonize myself. And once I am harmony, I am completely satisfied.
Bhushan, Sydney se.
I am on earth to excel, basically. So I believe that my or anyone, not just me, anybody's soul basically is trying to excel, and because of some things we haven't learned or we had to learn, therefore we take another birth, or which you also can call as wishes. There could be some desires or wishes to fulfill, therefore we take a birth, and then we grow towards the excel. We try to, while trying to fulfill those desires, we also learn a lot of things, and eventually everyone's soul evolves. So just like the process of evolution, even the souls evolves, and eventually it goes to a point where it can't excel any further, and that's when you get something called as mukti. This is what I believe. I hope this is what it is. But it may not be so, but that is what I believe in, that there is something pending of the last birth because of which we are born again to fulfill those desires, and in the process we learn a lot of things and we keep evolving, the soul evolves until it gets ultimately the best. Thank you.
अगर अब तक आपने पुनर्वास को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और लिसनर सपोर्ट से हमें सहयोग कीजिए। आप अभी भी अपने मैसेज हम तक भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7972445792 पर। और बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे आत्मनिर्भर पुनः नियोजित पुनर्वास के सफर में। धन्यवाद।